जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, हा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जयो जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय, जयो जय जय प्रभुपाद, 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 ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कन्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल दरो पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्बोधकिलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर्महतभी यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूष पूरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसषोडशात्मक सुलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे।
तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर प्रति गुरुवार को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अनुष्ठान प्राप्त किए हैं। प्रति गुरुवार को ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से हम कथा सुन रहे हैं। इस भागवतम के बारे में भागवतम के रचयिता श्री व्यास देव जी कहते हैं कि यदि कोई इस भागवत को सुनता है, सुनने की बात दूर रही, यदि कोई इस भागवत को सुनने की इच्छा प्रकट करता है, भागवत सुनने की इच्छा प्रकट करने वाले के हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म यत्न करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु वह भगवान केवल भागवत सुनने की इच्छा मात्र से हमारे हृदय में आ जाते हैं। सद्यो ही अवरुद्ध ते तकृति भी सुश्रूष भी तत्क्षणात्। भागवत के प्रारंभिक श्लोक में यह कहा गया है, सद्य तुरंत आप अपने घर पर बैठे हो, मान लीजिए कोई बोरीवली रहता है, विरार रहता है, घर से सोचता है कि मुझे यहां पर भागवत सुनने के लिए जाना है, जैसे ही वह सोचना प्रारंभ किए मुझे जाना है, उसी क्षण भगवान उनके हृदय में बंदी हो जाते हैं। फिर वह भागवत सुनने के लिए आए और आकर भागवत सुने तब जाकर भगवान आएंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। तो भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवान को हृदय में बंदी बनाने वाला यह ग्रंथ है। यदि कोई यह भागवत का श्रवण करता है तो वे भगवान को पकड़ सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस भागवत का श्रवण करके हजारों हजारों लोग भगवान को प्राप्त हुए हैं और उसके ज्वलंत उदाहरण है परीक्षित महाराज। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरी पृथ्वी का कारोबार महाराज परीक्षित के हाथ में था, परंतु सम्यक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा उसे श्राप मिला और श्राप था 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आकर उसे डस लेगा। महाराज परीक्षित को जब पता चला तो उन्होंने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं किया। महाराज परीक्षित तुरंत सुखताल में हरिद्वार के पास आए और वहां आकर भागवत सुनने के लिए इच्छा प्रकट किए। जैसे ही महाराज परीक्षित भागवत सुनने के लिए इच्छा प्रकट किए, भगवान के योग के कारण, देव के कारण, परम विदग्ध चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी विचरण करते हुए उसी स्थल में पधारे और पता चला महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा आयोजन हुआ, सुखदेव गोस्वामी को व्यासपीठ के ऊपर बिठाया और महाराज परीक्षित यह कथा सुनने के लिए बैठे और उस वक्त यह खबर पूरे भूमंडल में सभी जगह खबर फैल गई कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वायु वेग से यह खबर पहुंच गई और इस पृथ्वी के सभी छोटे बड़े सभी ऋषि मुनि, भागवत के प्रारंभ में सभी ऋषि मुनियों के नाम दिए हुए, असित, देवल, चौन इत्यादि, दुर्वासा, और केवल अकेले नहीं चलते थे, ये भागवत सुनने के लिए अपने 10,000 को शिष्यों को साथ में लेकर 100 शिष्यात इस प्रकार से आया है। अपने शिष्यों को साथ में लेकर यह भागवत सुनने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। ऐसा नहीं कि मंदिर में कुछ सेवा है तो आप रहिए, हम जाकर आते हैं, नहीं, सबको साथ में लेकर भागवत सुनने के लिए आए। यहां तक इस पृथ्वी के छोटे मोटे सभी ऋषि मुनि तो आए ही, परंतु इस पृथ्वी से ऊपर जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्ग लोक से देवता भी ये भागवत सुनने के लिए उपस्थित हुए। थोड़े कृपालु बनिए आगे। हरे कृष्णा 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 हरे, सब लोग यह भागवत सुनने के लिए पधारे हैं और महाराज परीक्षित बहुत ही सुंदर जिज्ञासा किए हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे परम विरक्त चुड़ामणि सुखदेव गोस्वामी, जिनके जीवन में जिनका बहुत कम जीवन बचा है, जो बहुत जल्द मरने वाला है, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा से भागवत प्रारंभ हुआ और उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च इच्छताम अभयम्। हे परीक्षित, यदि अभय चाहते हो, मृत्यु से बचना चाहते हो, तो तस्मात इसलिए परीक्षित भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने यही किया और आप सब जानते हैं बिल्कुल 7 दिन और 7 रात के बाद श्राप के कारण जो तक्षक नाग परीक्षित को आकर डसने वाला था, परंतु केवल 7 दिन कथा सुनने के प्रभाव से तक्षक नाग परीक्षित महाराज को डसने के लिए आए और उसकी मृत्यु हो जाए, उनके पहले ही भगवान के पार्षद आए और महाराज परीक्षित को लेकर धाम में चले गए। उस ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग जरूर आया, परंतु तक्षक नाग परीक्षित महाराज के मरे हुए शरीर को डसा। उनके पहले तो महाराज परीक्षित भगवान के धाम में पहुंच गए थे केवल यह भागवत सुनकर। भागवत श्रवण करना एक भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं भागवत सुनना चाहिए, परंतु भागवत सुनकर भागवत में जो उपदेश है, अर्थात भागवत को अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं है। परंतु ये बिल्कुल गलत है। भागवत सुनना ही एक भक्ति है, और भागवत की बातों को अपने जीवन में कैसे धारण करोगे बताइए। भागवत में लिखा है भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण किया, क्या उसका पालन करोगे आप? बताना चाहिए उस प्रभु को। नहीं, भागवत सुनना, चैतन्य महाप्रभु ने 5 साधन बताए हैं, उस 5 साधन में से भागवत का श्रवण करना एक भक्ति है। और भागवत इतना महान ग्रंथ है, यद्यपि गीता जब सुनते हैं तो गीता का अंत होता है सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। गीता सुनकर और पढ़कर कुछ करना बाकी रह जाता है। गीता जब पूरी पढ़ लेते हैं तब इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमें ये करना है ये नहीं करना है, परंतु भागवत सुनकर कुछ बाकी नहीं रहता है कि ये करना है ये नहीं करना है, क्योंकि भागवत सुनना ही एक भक्ति है। गीता सुनकर हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमें श्रवण और कीर्तन करना है, बाकी रहता है करने के लिए, परंतु भागवत सुनना ही एक भक्ति है। इसलिए कहा जाता है जहां पर गीता का अंत होता है वहां से भागवत शुरू होता है। तो भागवत भगवान का धाम प्रदान करने वाला, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है, और उसी भागवत का प्रति गुरुवार को श्रवण करने का हमें लाभ मिला है। इसके पीछे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है, कृपा है, जिसके कारण हम सब लोग विभिन्न विभिन्न घरों से गांवों से आकर एक छत के नीचे बैठकर भागवत सुनने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंध के 5वें अध्याय की कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र गृहस्थ जीवन जीना चाहते थे, तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा। तो ये 10,000 पुत्र कई वर्षों तक तपस्या किए, और तपस्या करके शुद्ध होकर जब वापस लौट रहे थे तब भगवान के सबसे बड़े प्रचारक नारद मुनि ने सोचा कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मौका है एक साथ 10,000ों को भक्त बनाने का है। नारद मुनि तुरंत अपनी वीणा बजाते हुए, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, अपनी वीणा के ऊपर निरंतर भगवान के नाम का जप करने वाले नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पुत्र घर पर लौट ही रहे थे, तो घर पर लौटे उसके पहले रास्ते में ही नारद मुनि उसे मिल गए और नारद मुनि मिलकर कहे कि तुम 10,000 लोग, मैंने तो सुना है तुम दक्ष प्रजापति के पुत्र हो जो प्रजा के पति हैं, प्रजा का पालन करने वाले हैं, परंतु तुम्हें देखकर मुझे बहुत खेद, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े राजा के पुत्र होकर भी तुम इस ऐसी मूर्खता भरे कार्य करने के लिए जा रहे हो। तुम इतने बड़े प्रजापति के पुत्र हो और गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, परंतु तुम मैं जो पूछ रहा हूं इसके बारे में जानते हो? नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछा कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यदि तुम इस 10 प्रश्न का उत्तर ही नहीं जानते हो तो आगे चलकर सृष्टि कैसे करोगे, गृहस्थ जीवन कैसे बिताओगे? तो नारद मुनि ने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि उवाच चार्थ हर्यश्वा कथम सक्ष यथ वे प्रजा अदृष्टवान्तं भो युयम बालिशा बत पालका। नारद मुनि ने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि इस पृथ्वी का अंत तुम जानते हो? ये पृथ्वी का अंत कहां पर होता है इस बात को तुम जानते हो? खैर आप सब तो जानते होंगे कहां होता है अंत, कौन बताएगा? क्योंकि पिछले गुरुवार को सुना है इसलिए याद होना चाहिए। तो आइए परीक्षा ले लेते हैं, कौन बता सकता है? समीर प्रभु पिछले गुरुवार की बात भूल गए? नहीं नहीं हो गया था, बताइए। सबसे पहले ये बताइए पृथ्वी का अर्थ क्या है, फिर उसका अंत क्या कहां होता है, बताइए। वेरी गुड। और हाँ, इसका क्लियर करेंगे। इस पृथ्वी जो है, बहुत सुंदर पहेली कही थी नारद मुनि ने, तो यह पृथ्वी जो है हमारा शरीर है और इस शरीर का अंत जब तक यह आत्मा अर्थात हम भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक यह पुनरपि जन्म जठरे शयनम, तब तक यह शरीर बदलते रहने पड़ेंगे। तो इस शरीर का अंत है भगवान का धाम, इसका डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? भगवान का धाम। तो पृथ्वी हमारा शरीर है, इसका अंत है भगवान का धाम। तो नारद मुनि ने पहला प्रश्न पूछा, दक्ष प्रजापति के पुत्र इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, नारद मुनि के प्रश्न पूछते ही वे तुरंत समझ जाते थे। लेकिन यहां पर हमारी स्थिति देखिए, हम प्रश्न सुन रहे हैं, उत्तर भी सुन रहे हैं, उस पर व्याख्या भी हो रही है, लेकिन फिर भी याद नहीं है। कई लोगों ने सुना, एक माता जी को याद रहा। तो इस प्रकार से इस शरीर का अंत भगवान के धाम में होता है और जब तक भगवान के धाम में हम नहीं पहुंचेंगे तब तक यह शरीर बदलते रहने पड़ेंगे, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता कभी मनुष्य, इस प्रकार से 84 लाख योनि के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो यह पहला प्रश्न नारद मुनि का हुआ कि तुम इस शरीर के अंत को ही नहीं जानते हो तो किम असत कर्म भीर भवेत, तो तुम कैसे सृष्टि करोगे? अब नारद मुनि दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। आज नारद मुनि कहते हैं, तथैक राष्ट्रम पुरुषम। नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक पुरुष रहता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जरा सोचकर आइएगा, एक ऐसा राष्ट्र है तथा एक राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, कौन बता सकता है? आपको तो मैं बताया था, बताइए प्रभुजी। तथैक राष्ट्रम पुरुषम, तो राष्ट्र का अर्थ यहां पर महाराष्ट्र या सौराष्ट्र नहीं है, यह एक पहेली है। इसलिए राष्ट्र का अर्थ है यह अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसमें आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत सब कुछ आ जाता है। तो यह बहुत बड़ा राष्ट्र है, अर्थात अनंत कोटि ब्रह्मांड, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, यह सभी जगत में मिलकर कितने पुरुष है? केवल एक पुरुष है। तो आप कहोगे हमें तो बहुत लोग इस घर में ही बहुत पुरुष दिख रहे हैं, और यहां पर कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है, ये कैसे हो सकता है? तो वास्तव में पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। एक पुरुष कैसे है ये जानना चाहिए। तो सबसे पहले पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और स्त्री जो है वे भोग्य है। पुरुष हमेशा किसी किसी वस्तु को भोगते रहता है, तो पुरुष का अर्थ है भोगता। ये चीज एक याद रखिए। और भगवान का अर्थ होता है भग, का अर्थ होता है नाना प्रकार के भोग, और वान का अर्थ होता है जो उसे भोगता है। तो पुरुष का अर्थ होता है भोगता और भगवान का अर्थ होता है भोगता, इसलिए पुरुष का अर्थ होता है भगवान। समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो इसमें a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू c। बस इसी प्रकार है, पुरुष का अर्थ है भोगता और स्त्री जो है वे भोग्य है। तो पुरुष का अर्थ यदि भोगता है और भगवान का अर्थ भी भोगता है, इसका अर्थ हुआ पुरुष का अर्थ है भगवान। तो यहां पर प्रश्न है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में तथ एक, केवल एक ही भगवान है, और वे कौन है? कौन है सब लोग बताइए। सब लोग मान रहे हैं कृष्ण ही भगवान है, व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। तथेक राष्ट्रम पुरुषम, केवल एक ही भगवान है। लेकिन खैर आप सब तो बुद्धिमान हो, परंतु बहुत खेद की बात है कि मुसलमान लोग केवल एक को ही भगवान मानते, अल्लाह को। जो क्रिश्चियन है वे केवल जीसस क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, परंतु हमारे हिंदुओं में इतनी गड़बड़ है कि कई लोगों को भगवान मानते हैं। हनुमान जी भगवान है, ये भगवान है, ये देवता भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, हजारों हजारों भगवान बना बैठे हैं। परंतु वास्तव में यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं तथेक राष्ट्रम पुरुषम, केवल एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते हैं, भगवान केवल एक ही है। और वे कौन है? आप तो बुद्धिमान हो, आप तो कह दोगे कृष्ण। लेकिन बाहर किसी को आप मिले और किसी ने कह दिया कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, हम कैसे मान ले? कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं। तो इसे दर्शन के साथ, फिलोसॉफी के साथ समझाना होगा कि भगवान एक ही है और वे भगवान कौन है। तो भगवान कौन है यह जानने के लिए सबसे पहले हमें भगवान शब्द जो है उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या जाननी होगी। भगवान कौन है यह जानने के लिए सबसे पहले भगवान शब्द का अर्थ जानना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर को चुनिए, तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए प्राइम मिनिस्टर किसको कहते हैं सबसे पहले यह जानना होगा, तब जाकर प्राइम मिनिस्टर को आप चुन सकते हो। ठीक उसी प्रकार भगवान कौन है यह जानने के लिए भगवान शब्द की व्याख्या जाननी होगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो भगवान कौन है यह जानने के लिए भगवान शब्द की व्याख्या जाननी होगी। भगवान किसे कहते हैं? व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या देते हुए कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्य चैव शशणां भग इति गणा। भगवान उसे कहते हैं जिसमें छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो, जिसमें छह प्रकार के गुण परिपूर्ण मात्रा में हो उसे ही भगवान कहा जा सकता है। तो ये छह प्रकार के गुण कौन से हैं? ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्य श्रीय ज्ञान वैराग्य चैव। सबसे पहला गुण है सुंदरता, जिसमें पूर्ण सुंदरता हो। दूसरा है बल, जिसमें पूर्ण बल हो। तीसरा है यश, जिसमें पूर्ण यश हो। चौथा है धन, जिसके पास पूर्ण धन हो। पांचवा है ज्ञान, जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो। और छठा है वैराग्य, जिसके पास पूर्ण वैराग्य हो। यह छह चीज जिसके पास पूर्ण हो उसे ही भगवान कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये छह चीज किसके पास पूर्ण है? केवल कृष्ण के पास ही यह छह चीज पूर्ण है। सुंदरता यदि देखी जाए तो कृष्ण से सुंदर और कोई है ही नहीं। कृष्ण सुंदर अति सुंदर है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। वे गोविंद इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी एक गोविंद को देखकर मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर है। और ब्रज के सखा तो यहां तक कहते हैं, कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं, कृष्ण की सुंदरता इतनी थी कृष्ण जब अपने घर से निकलते थे तो सभी लोगों के नाक में दम करके रख देते थे। सबसे पहले कृष्ण जब घर से निकलते थे तो सारी गोपियां अपना काम धंधा छोड़कर उसका दर्शन करने के लिए आ जाती थी। लता पता पेड़ वृक्ष प्राणी ये सब लोग कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए स्तब्ध हो जाते थे। तो यह देखकर कृष्ण के जो ग्वाल बाल सखा थे इत्यादि कहते थे, कृष्ण को गाली देकर कहते थे। वास्तव में कृष्ण को गाली सुनने में जो आनंद आता है, वे बड़े बड़े श्लोक और स्तुति में इतना कृष्ण को आनंद नहीं आता है जितना गाली सुनने में आता है। इसलिए कहते हैं जो नहीं स्वाद ब्रह्म सुस्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। ब्रह्मा जी की स्तुति में भी इतना आनंद नहीं है जितना ब्रजवासियों की गालियों में आनंद है। तो ब्रज के सखा कृष्ण को कहते थे अरे सारे सारे एक गाली है, अरे सारे तू लड़का बना है तो इतना उत्पात मचा कर रख दिया है। लता पता पेड़ पौधे प्राणी पशुओं को भी चैन से नहीं रहने देता है। यदि भगवान ने तुझे लड़की बना दिया होता तो लाखों लोग गला काट कर मर जाते हो। कहते कट जाते गले करोड़न के, करोड़ों करोड़ों लोग तुझे प्राप्त करने के लिए काट कर मर जाते हैं। अच्छा हुआ है भगवान ने तुझे लड़का बनाया है। तो कृष्ण की सुंदरता बहुत ही अत्यंत सुंदर थे कृष्ण। कृष्ण के पास पूर्ण बल दूसरा गुण है बल। अब ये तो आप जानते ही हैं, 7 दिन 7 रात तक 7 साल की आयु में भगवान ने गोवर्धन धारण करके रखा, कौन कर सकता है। कृष्ण के पास पूर्ण यश, कृष्ण को इस ब्रह्मांड में सब लोग जानते हैं। कृष्ण के पास पूर्ण ज्ञान, ये भगवत गीता जो हम दिन रात पढ़ते रहते हैं फिर भी पार नहीं पा सकते हैं, वह भगवत गीता केवल 45 मिनट में अर्जुन को सुना था। और कृष्ण के पास पूर्ण वैराग्य, ये सब कुछ होते हुए भी भगवान के पास पूर्ण वैराग्य। और कृष्ण के पास पूर्ण धन भी है। द्वारका में रहते थे, अपना महल सोने से बना हुआ था, तो जिसके पास सोने का घर हो उसके पास कौन सी कमी है। तो इस प्रकार कृष्ण के पास यह 6 गुण पूर्ण मात्रा में है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं हो सकता। और भी कई सारे डेफिनेशन है। एक बार हम हमारे गुरु महाराज से सुन रहे थे कि जब ब्रिटिश लोग हमारे इस भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुसलमान लोग केवल अल्लाह को ही पूजते हैं, क्रिश्चियन लोग केवल जीसस को ही पूजते हैं, परंतु ये हिंदू में कई लोगों को पूजते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि यह सभी लोगों में वास्तविक भगवान कौन है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम्हारे हिंदू के जितने भगवान हैं सभी के एक एक फोटो लाकर हमें यहां पर जमा कराओ। तो सभी देवी देवताओं के फोटो वहां पर जमा किए और जो बुद्धिमान ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सभी फोटो को बहुत स्टडी किया। दुर्गा देवी का फोटो देखा, देखा हाथ में त्रिशूल है। हाथ में त्रिशूल है इसका अर्थ है कि कुछ कार्य करने के लिए यह लगी है या किसी से भय है इसलिए मशीन गन या त्रिशूल हाथ में रखा है। कुछ टेंशन में कुछ बिजी है यह का ये भगवान नहीं हो सकता है। जो बिजी है, जो टेंशन में है, जिसे अपनी रक्षा करने के लिए आयुध रखना पड़ता है, ये नहीं हो सकता। शिव जी आए, शिव जी का फोटो लाए। शिव जी माला जप रहे थे तो देखा लोग इसे भगवान मान रहे हैं परंतु ये भी किसी के नाम की माला जप रहे हैं। इसका अर्थ है ये भगवान नहीं हो सकते, ये जिसकी माला जप रहे वो शायद हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 33 करोड़ देवी देवताओं को फोटो देखा, अंत में कृष्ण का फोटो हाथ में आया। और कृष्ण का बहुत ही सुंदर आप देखे होंगे, कृष्ण का फोटो हाथ में बंसरी लिए मुस्कान के साथ खड़े रहते हैं बिल्कुल बिंदास। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये लड़का जो है बिना टेंशन के खड़ा है और बंसरी बजा रहा है और गा रहा है, और व्यक्ति तभी गाता है जब बिल्कुल प्रसन्न चित हो। हम देखते हैं ट्रेन से जब हम आते हैं ऑफिस से तो कुछ लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं ट्रेन के गेट पर खड़े रहकर जोर जोर से गीत गाना गाते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये बालक के पास न तो कोई आयुध है न तो किसी भी प्रकार का टेंशन है और बिल्कुल मजे से ये बंसरी बजा रहा है गा रहा है, यही भगवान हो सकता है। तो वास्तव में कृष्ण ही भगवान है, उसे किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। वैसे देखा जाए तो भगवान ही इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को चला रहे हैं परंतु वे चलाते हुए भी टेंशन नहीं है। और यहां पर हमारी हालत इस भौतिक जगत में जो अपने आप को भगवान मानते हैं उसकी हालत हम देखते हैं कि अपने एक फैमिली का भार भी नहीं ढो सकते हैं, केवल पत्नी और बच्चों का पालन करने में इतने टेंशन में रहते हैं कि हम जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है पूरी दुनिया का भार इस व्यक्ति के सिर पर है। परंतु भगवान प्रसन्न चित है, इसीलिए उस भगवान की कोई भक्ति करता है तो वह प्रसन्न चित हो जाता है। तो यहां पर कहते हैं तथेक राष्ट्रम पुरुषम एक एव ईश्वरस्तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर तम दृष्ट्वा भवम पुंसम किम असत कर्म भीर भवे। केवल एक ही भगवान है, वो है कृष्ण, वही परम पुरुष है क्योंकि वही सभी कारणों के कारण है। अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो नारद मुनि के इस पहेली को दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र समझ गए कि वास्तव में इस संसार में एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, वो है कृष्ण, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक लिया जाए और प्रश्न, ठीक है एक ले लेते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रश्न हुए। तब नारद मुनि ने तीसरा प्रश्न पूछा। नारद मुनि का तीसरा प्रश्न है बिलम च अदृष्ट निर्गमम। नारद मुनि कहते हैं बिलम च अदृष्ट निर्गमम। नारद मुनि ने कहा कि एक ऐसा बिल है, उस बिल में जो व्यक्ति चला जाता है फिर वहां से वापस नहीं लौट सकता है। नारद मुनि ने कहा एक ऐसा बिल है, जैसे हम देखते हैं चूहे बिल में जाते हैं बाहर आते हैं, परंतु नारद मुनि ने कहा कि एक ऐसा बड़ा बिल है जिसमें कोई व्यक्ति जाता है, जा सकता है, परंतु वापस निकलने का रास्ता नहीं है। तो बताइए वह बिल कौन सा है, जानते हैं? संसार नहीं, माया नहीं, भगवद्दान। हाँ सही जवाब। नारद मुनि ने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां पर कोई चला जाता है तो वापस नहीं आता है, तो वह जगह है भगवान का धाम। भगवान का धाम ऐसा है जहां पर कोई व्यक्ति यदि चला जाता है तो उसे वापस नहीं आना पड़ता, परंतु भगवान के धाम में जाने के लिए कुछ करना होता है। जैसे आपको यदि दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन टिकट निकालनी पड़ती है, और टिकट निकालने के लिए भी धन चाहिए, और धन प्राप्त करने के लिए कमाना होता है। तो दिल्ली, केवल दिल्ली जाने के लिए बहुत बहुत प्रोसीजर करनी पड़ती है, तो भगवान के धाम में जाने के लिए कुछ प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप हरे कृष्ण करते हो, भगवान भगवान का धाम बोलते रहते हो, परंतु क्या कभी आपने भगवान को देखा है? कभी भगवान के धाम को, भगवान को कभी देखा? परंतु भगवान को देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान निश्चित रूप से है, भगवान यहीं पर सब जगह है ब्रह्म के रूप में, परंतु वह भगवान बिना प्रयास के नहीं दिखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं, यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोशु भूयन्न अंबु उद्यमने च वृत्तिम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है कि नहीं? लकड़ी में जब आग लगाई जाती है तो अग्नि बाहर से नहीं लानी पड़ती, उस लकड़ी से ही अग्नि निकलती है, परंतु उस लकड़ी से अग्नि को प्रकट करने के लिए उसमें आग, माचिस की तीली लगाने की आवश्यकता है। ऐसे लकड़ी को लेकर खड़े रह गए और आप कहने लगे इसमें से अग्नि निकल ही नहीं रही है, इसमें अग्नि है ही नहीं, तो वे कभी नहीं निकलेगी। उस लकड़ी से अग्नि को यदि प्राप्त करना हो तो उसे माचिस की तीली लगाने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हम कहते हैं भगवान है तो कहां है, दिखते नहीं है, परंतु उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर दूसरा दृष्टांत देते हैं कि गाय से दूध निकलता है, दूध जो है वे गाय से प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि इस गाय में दूध है, तो उस गाय को यदि कोई काट डाले और काट कर देखे यहां पर दूध कहां है, तो वैसे दूध प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में कुछ लोग होते हैं भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए भी कुछ विधि है। यहां से दिल्ली जाने के लिए कुछ विधि होती है, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे गाय से दूध प्राप्त करने के लिए कुछ विधि है, गाय को काटकर उससे दूध नहीं निकाला जा सकता है। गाय से यदि दूध चाहिए तो पहले गाय को घास खिलाइए, घास खिलाने के बाद वे जब वह घास खाती है तब अपने थन में दूध छोड़ती है और उस दूध को आप ग्रहण कर सकते हो। तो गाय से दूध प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य, कुछ विधि की आवश्यकता है। लकड़े से अग्नि प्राप्त करने के लिए कुछ विधि, कुछ कार्य की आवश्यकता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य और कुछ विधि की आवश्यकता नहीं है, है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विधि है वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा भगवान और भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति का अर्थ होता है, मैं यहां पर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, यह है भक्ति। और भक्तों के अभाव में भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति को ऐसे हायर चीज नहीं है कि जो हम नहीं कर पाएंगे। भक्ति ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो छोटा बालक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, गर्भ में रहने वाला बालक भी भक्ति कर सकता है, और म्रियमाण अवस्था में मरने वाला व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। जैसे मरते हुए अजामिल ने भक्ति की, गर्भ में रहकर प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, इस प्रकार से बहुत बहुत दृष्टांत है। ये भक्ति स्वभावतः स्वाभाविक है और कोई भी कर सकता है। भगवान की कथा सुनना और महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा तो इस प्रकार से निरंतर कथा सुनना और भगवान का नाम लेना, इसे भक्ति कहते हैं। और कथा और कीर्तन के द्वारा भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आता है कि इस शरीर को छोड़कर भगवान के पार्षद विष्णुदूत आते हैं लेने के लिए, और वे ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जो नारद मुनि कह रहे हैं, ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं, भगवान के धाम में लेकर जाते हैं। और भगवान के धाम में एक बार जो व्यक्ति पहुंच जाता है वे फिर वापस वहां से नहीं आता है। गीता में भगवान क्लियर कहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये अर्जुन, मेरा धाम कैसा है, मेरा भजन करके व्यक्ति यदि मेरे धाम में आ जाता है तो वह व्यक्ति कभी भी मेरे धाम से बाहर नहीं जा सकता, फिर कभी भी यह जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा, वे मेरे धाम में ही नित्य सुख नित्य लीला में आनंद लेता रहेगा। तो उस धाम के बारे में ही आप नहीं जानते हो, नारद मुनि कह रहे हैं कि उस धाम के बारे में आप नहीं जानते हो तो कहां से सृष्टि उत्पन्न करोगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि के बहुत ही सुंदर प्रश्न और दक्ष प्रजापति के पुत्र बहुत ही ठीक प्रकार से समझे, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाए। तो इस प्रकार से जैसे यह 10 प्रश्न को सुनकर, केवल प्रश्न सुनकर 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्र भक्त बन गए, और भक्त ही नहीं ब्रह्मचारी बन गए। तो हमें ब्रह्मचारी तो नहीं बनना है, परंतु दक्ष प्रजापति के पुत्रों को जो भक्ति प्राप्त हुई उससे 1% भी भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी तब भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रति गुरुवार को यहाँ पर नारद मुनि के इस प्रश्न को और दक्ष प्रजापति के पुत्र के उत्तर को सुनेंगे, और इस उत्तर को सुनकर हमारे जीवन में बहुत ही प्रगति आ सकती है, भक्ति लाभ हो सकती है। परंतु सभी भक्तों को यह ध्यान में रखना चाहिए, यह सभी का सार है भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि उस धाम में जाना है जहाँ से वापस नहीं लौटना है, तो उस धाम में जाने के लिए निरंतर भागवत कथा श्रवण कीजिए और भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आप हमें क्षमा कीजिए क्योंकि हम एक विवाह में गए थे और मैंने सोचा था वहां से हम जल्दी निकल जाएंगे, परंतु हम हमारे स्वभाव के वश में होकर वहां से आने में ही लेट हो गया, तो आप लोगों को बहुत कम समय दे पाए और बहुत लेट हो गया, 11:45 बज गया। परंतु अगले गुरुवार से हम बिल्कुल 8:30 बजे शुरू कर देंगे और 10 बजे खत्म कर देंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पूछिए, कोई प्रश्न है पूछिए। हाँ, प्रभुपा जी क्लियर कहते हैं, हाँ करोड़ों लोग पागल हो सकते हैं, हम क्यों पागल बने। किसी भी वस्तु को स्वीकार करना ये हमारी और आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं है, ये चीज सही है और यह चीज गलत है हमारी और आपकी बुद्धि इसे निर्णय नहीं कर पाएगी। कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है ये जानने के लिए वेद और शास्त्र का सहारा लेना होगा। तो वेद और शास्त्र में क्या लिखा है, वेद शास्त्र किसे भगवान मान रहा है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। तो क्या शास्त्रों में यह लिखा है कि गणपति जी भगवान है? हाँ, वे देवता हैं, बहुत उच्च कोटि के जीव है, परंतु भगवान तो केवल कृष्ण ही है। और कृष्ण को भगवान कह के हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप देवी देवताओं का अनादर कर दो, कल से उनके सामने मत देखो, उनके मंदिर में न जाओ, नहीं जाओ, खूब जाओ। परंतु यह ज्ञान होना चाहिए कि 33 करोड़ जो है, हम बोलने में स्वाभाविक बोलते हैं कि यह देवी देवता है, बोलते हैं कि नहीं, तो वास्तव में वह देवी देवता है और कृष्ण जो है वह सुप्रीम पर्सनलिटी, साक्षात भगवान है। तो इस प्रकार से डील ऐसे ही करना है। हाँ, आप स्वाभाविक पूछ रहे कैसे डील करना है। तो मान लीजिए एक पत्नी होती है, पत्नी का जब विवाह होता है, आज ही हम विवाह में जाकर आए, तो हमारी एक भक्त ही है हमारे साथ भक्ति में, लेकिन आज से उसका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। आज विवाह हुआ है, अब वे जिसके साथ पली बड़ी हुई, उनके जो माता पिता जो भी रिश्तेदार थे, उसे छोड़कर एक नए घर में जा रही है, ठीक है। तो वास्तव में उसका विवाह एक लड़के के साथ हुआ है, उसका विवाह उनके पति के साथ हुआ है, परंतु फिर भी वे अपने पति के घर जाकर केवल पति की सेवा करेगी नहीं, वे अपने सास की, ससुर की, ननंद की, अपने भाभी की, सबकी सेवा करेगी। परंतु ये सबकी सेवा तो सबकी करेगी, परंतु आपकी अपने हृदय में किसको बिठा कर रखेगी? केवल अपने पति को। समझ रहे हो इस बात को? जब कोई स्त्री विवाह करती है तो सेवा अपने घर के सब लोगों की करती है, परंतु हृदय में तो अपने पति ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को आदर देना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, परंतु हृदय में स्थान देना है तो केवल कृष्ण को। इस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्त्री ने पति के साथ विवाह किया है और पति के घर पे जाकर यदि वे कहे कि नहीं, मैं सास ससुर की सेवा नहीं करूंगी, मैं ननंद की सेवा नहीं करूंगी, तो ये बिल्कुल गलत है। उसने पति के साथ विवाह किया है तो उसके रिलेटिव जो है उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उनके जो भक्त हैं उनको आदर देना, परंतु भजन तो केवल कृष्ण का होना चाहिए। पूछिए।
भगवान चारों जगह पे,
हर जगह पर। हाँ,
अपने शरीर के अंदर भी तो भगवान है।
हाँ है,
उसको मानना पड़ेगा।
हाँ है ना, भगवान के तीन फेज है, भगवान के तीन रूप है, भगवान एक साथ तीन जगह पर विराजते हैं। भागवत में आया है, वदन्ति तत्तत्व विदह तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द दे। वह परम तत्व भगवान श्री कृष्ण एक साथ तीन जगह पर होते हैं। भगवान इति, वे भगवान अपने पूर्ण रूप में अपने धाम में विराजते हैं, लीला करते हैं कृष्ण के रूप में, और वही भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं, और वही भगवान इस संसार की सभी वस्तुओं में ब्रह्म के रूप में विराजते हैं। तो एक साथ तीन फेज में भगवान होते हैं, तो तीनों को स्वीकार करना है। ब्रह्म के रूप में भगवान जो है उसे भी स्वीकार करना है, परमात्मा के रूप में है उसे भी स्वीकार करना है, और वे अपने पूर्ण रूप में अपने धाम में जो लीला करते हैं वह भी स्वीकार करना है। परंतु पूर्ण ज्ञान यह होगा कि भगवान अपने धाम में लीला करते हैं। कुछ लोग का ज्ञान यही होता है कि भगवान ब्रह्म है, आगे का ज्ञान उसे नहीं होता है। कुछ लोग यहां तक पहुंचते कि भगवान केवल परमात्मा है, परंतु पूर्ण ज्ञान है भगवान का एक रूप है, साकार है, वे निराकार नहीं है। ठीक है माता जी, ठीक है आपको? हाँ पूछिए। शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। बस प्रॉब्लम यही है कि शुद्ध भक्ति नहीं है, इसलिए यह दुख और प्रॉब्लम लग रहे हैं। यदि शुद्ध भक्ति के स्तर पर यदि हम हैं तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। जैसे हमारे गोस्वामी गण शुद्ध भक्ति के स्तर पर थे, आज हमें एक टाइम भी भोजन नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। हमारे गोस्वामी एक एक महीने में केवल एक लोटा छाछ पीते थे और सोते कितना थे? महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, वृंदावन से कोई महाप्रभु के पास आता था तो महाप्रभु पूछते थे, मेरे रूप और सनातन क्या कर रहे हैं, उनका जरा हाल चाल बताओ। तब वे यात्री यही कहते थे कि अष्ट प्रहर भजन आर चारी दंड शयने, कि आपके रूप और सनातन अष्ट प्रहर भजन करते हैं। दिन में 24 घंटा होते हैं तो 24 घंटे में से 22 घंटा वे भजन करते हैं, और केवल 2 घंटे में अपना स्नान शौच आदि क्रिया करते हैं, और वे कहते हैं कि 22 घंटा भजन करते हैं और कभी कभी भजन में जब आनंद आ जाता है तब वे 2400 घंटा भजन करते रहते हैं निरंतर। और खाने पीने में क्या खाते हैं, तो कहते शुष्क रोटी चना चबाए, शुष्क रोटी 5-10 दिनों की सूखी हुई रोटी खाते थे। और ये तो कभी कभी भाग्य से मिल जाती थी, भाग्य से मिलने पर रोटी खाते थे, नहीं तो एक एक महीने में केवल एक लोटा छाछ पीकर अपना जीवन बिता देते थे। और फिर भी यह बिताने के बाद भी प्रसन्न चित आनंदित होकर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत इत्यादि। हम भी मान लीजिए एक बार भूखे रह जाएंगे, लोग रहते हैं जो अलग पंथ में अलग संप्रदाय में है भूखे रहते हैं परंतु लेटे हुए रहते हैं, 10-15 दिन कोई भूखे रह गया तो पेपर में आता है कि इन्होंने इतना उपवास किया ये किया, और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सब लोग जाते हैं और मूंग का पानी इत्यादि सब लोग अपने हाथ से पिलाते हैं। ऐसा नहीं, भूखे रहते थे लेकिन एहसास नहीं था कि हम भूखे हैं, क्योंकि भजन में स्थित शुद्ध भक्ति के स्तर में, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। और कोई प्रश्न है?